ये आकाशवाणी है। अब आप गौरव राघव से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नागरिकों के स्वास्थ्य पर राष्ट्र की प्रगति निर्भर है, इसलिए सरकार स्वास्थ्य सेवा के आधार को मजबूत कर रही है। प्रधानमंत्री ने आज धन्वंतरी जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में कहा कि इसी दृष्टिकोण को अपनाते हुए केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य नीति के 5 स्तंभ निर्धारित कर नागरिकों के स्वास्थ्य को प्रमुखता दी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने लगभग 12,850 करोड़ रुपए की लागत की स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि वंचितों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत वंचितों के स्वास्थ्य संबंधी खर्चों में से 5,00,000 रुपए सरकार उपलब्ध कराएगी। प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 70 वर्ष और उससे अधिक की आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य कवरेज का विस्तार भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरे देश में 2,00,000 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्ष में आयुष विनिर्माण क्षेत्र में $3 अरब से बढ़कर करीब $24 अरब का हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में फिलहाल 900 से अधिक आयुष स्टार्टअप कार्यरत हैं, इससे युवाओं को नई संभावनाएं सृजित हुई हैं। श्री मोदी ने भारत के पहले अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के दूसरे चरण का भी उद्घाटन किया। उन्होंने मध्य प्रदेश के मंदसौर, नीमच और सिवनी में 3 मेडिकल कॉलेजों का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर, पश्चिम बंगाल के कल्याणी, बिहार के पटना, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और मध्य प्रदेश के भोपाल, असम के गुवाहाटी और नई दिल्ली में विभिन्न एम्स अस्पतालों में सुविधा सेवा का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के शिवपुरी, रतलाम, खंडवा, राजगढ़ और मंदसौर में 5 नर्सिंग कॉलेजों की आधारशिला भी रखी। इस बीच जन आरोग्य योजना के कवरेज को बढ़ाए जाने के मद्देनजर आयुष्मान कार्ड धारकों ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और अंतरिक्ष से लेकर विद्युत वाहन में नई प्रौद्योगिकी सहित प्रत्येक क्षेत्र में मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री ने आज विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में अलग अलग स्थानों पर बिजली गिरने के साथ तूफान की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार केरल, माहे, लक्षद्वीप, तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी अगले 3-4 दिनों के दौरान हल्की बारिश होने की संभावना है। महाराष्ट्र में एक ही चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया आज समाप्त हो गई। नामांकन पत्रों की जांच कल की जाएगी। 4 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। राज्य की सभी 288 सीटों के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा। मतगणना 23 नवंबर को होगी। इस बीच झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया भी आज समाप्त हो गई। इस चरण में 38 सीटों के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा। नामांकन पत्रों की जाँच कल की जाएगी और उम्मीदवार 1 नवंबर तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में अनियमितताओं के बारे में कांग्रेस के सभी आरोप निराधार हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे पत्र में आयोग ने कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों को आगाह किया है कि वे चुनाव और मतगणना जैसे संवेदनशील मामलों में बेतुके और सनसनीखेज आरोप न लगाएं। देश भर में आज धनतेरस का त्यौहार हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। धनतेरस को धन त्रयोदशी और धन्वंतरी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इस शुभ दिन लोग भगवान धन्वंतरी, भगवान कुबेर और देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। इस दिन को लोग नई खरीदारी, विशेषकर सोने या चांदी की वस्तुएं और नए बर्तन खरीदने के लिए शुभ मानते हैं। भगवान राम की नगरी अयोध्या में भव्य दीपोत्सव होने जा रहा है। अयोध्या में कल होने वाले भव्य दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। नया विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए सरयू नदी के घाटों पर 28,00,000 दीपों की व्यवस्था की गई है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराकर एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।